Iran Radio Podcast। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े फार्म हाउसों में गुलामों को एक बड़ी सी इमारत में रखा जाता था। ये इमारतें आमतौर पर लकड़ी से बनाई जाती थीं और हर इमारत में करीब 200 गुलामों को रखा जाता था। कुछ इमारतों की छतों को मिट्टी और दीवारों को पत्थर से बनाया जाता था। इमारत के भीतर घुप अंधेरा होता था और सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान होता था जिसमें लोहे की सलाखें लगी होती थी। हॉल के कोने में एक गढ़ा खोद दिया जाता था जहां गुलाम अपनी हाजत पूरी करते थे या जिसे वॉशरूम के रूप में इस्तेमाल करते थे। वातावरण में चारों ओर बदबू फैली होती थी और मक्खियां भिनभिना रही होती थीं। मच्छर गुलामों का खून चूसते रहते थे। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 10वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। गुलामों को आम तौर पर खाने में सुअर की चर्बी और गन्ने का रस दिया जाता था और कभी कभी उन्हें कॉफ़ी भी दी जाती थी। वे सूरज के उदय से पहले काम करना शुरू कर दिया करते थे और सूरज डूबने तक व्यस्त रहते थे। जो गुलाम तंबाकू के खेतों में काम करते थे उन्हें तंबाकू के पौधे के उन पत्तों को जमा करना होता था जिनसे बदबू आने लगती थी और उन पत्तों से चिपके हुए कीड़ों को अलग करना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो मालिक पत्तों पर लगे कीड़ों को खाने के लिए उन्हें मजबूर करता था। मालिक के हुक्म की छोटी सी नाफरमानी के लिए कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। हर गुलाम को निर्धारित मात्रा में पैदावार दिखानी ही पड़ती थी। अगर वो इस आंकड़े को हासिल नहीं कर पाता था तो उसे कोड़े मारे जाते थे। इंग्लैंड में मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों को प्रतिदिन अधिक कपास की ज़रूरत होती थी। अंग्रेज सरकार को इन फैक्ट्रियों से अधिक कर वसूलने की आशा होती थी, इसलिए गुलामों को अमरीकी कपास के खेतों में रात दिन काम करना होता था। अपना काम ठीक से नहीं करने वाले गुलामों के अंगों को जलाकर यातनाएँ दी जाती थीं, सजाएँ दी जाती थीं। जो गुलाम खेतों के बजाय घरों में काम करते थे उनकी हालत थोड़ी बेहतर थी। वे मालिकों का बचा हुआ खाना खा सकते थे और उनके पुराने कपड़े पहन सकते थे। जो गुलाम कोई तकनीकी महारत रखते थे उन्हें अधिक आज़ादी हासिल होती थी और वे शहर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। गुलामों को किराए पर भी लिया जा सकता था। जो गुलाम किसी तकनीक में महारत रखते थे उन्हें कारखाने वाले किराए पर ले जाते थे। कारखानों में अगर उत्पाद में इजाफा होता था तो कभी कभी गुलामों को इनाम भी दिया जाता था। ये गुलाम बैंकों में खाता भी खोल सकते थे। इस तरह की सुविधाएं इसलिए प्रदान की जाती थीं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। मालिक सिर्फ अपने हितों की चिंता करते थे। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में गुलामों का व्यापार बड़ा लाभदायक व्यापार था। इस व्यापार के कारण कई अन्य व्यापार वजूद में आ गए थे। जो जहाज़ गुलामों को अमरीका पहुंचाते थे वापसी में उनमें चीनी, कपास, तंबाकू, शीरा, मसाले और सोना लादा जाता था और यूरोपीय बाज़ारों में बेचा जाता था। उसके बाद जहाज़ों में हथियार, शराब और कपड़ा भर लिया जाता था ताकि अफ्रीकी बाज़ारों में बेचा जा सके। वे इस सामान को अफ्रीकी कबीलों के सरदारों को बेचा करते थे और उसके बदले में उनसे गुलाम खरीदा करते थे जिन्हें लेकर फिर वे अमरीकी बाज़ारों का रुख करते थे। कुछ व्यापारियों ने इस त्रिकोणीय व्यापार को बहुत आसान बना दिया था। पहले वे जहाज़ों को शराब के बैरलों से भर दिया करते थे, उसे लेकर अफ्रीका पहुंचते थे और उसके बदले कबीलों के सरदारों से ग़ुलाम खरीदते थे। उसके बाद मध्य अमेरिका पहुंच जाते थे और वहां ग़ुलामों के बदले शीरा खरीदते थे और उसके बाद अधिक शराब तैयार करने के लिए शीरे का इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में यूरोपीय और अमेरिका में व्यापार के लिए इस तरह के कई त्रिकोणीय केंद्र थे जहां ग़ुलामों को तरह तरह के सामानों के बदले खरीदा और बेचा जाता था। इन सभी त्रिकोणों का एक सिरा समान था और वो था अफ्रीका। इस व्यापार में सबसे ज़्यादा चीज़ जिससे कि खरीदो फरोख्त होती थी वो थी शराब और ग़ुलाम। जो शराब यूरोप से अफ्रीका पहुंचती थी उसे पीकर लोगों के होश उड़ जाते थे और लोगों का लालच और दूसरों पर अत्याचार करने की भावना बढ़ जाती थी। ऐसे में इन लोगों के हाथों में आग उगलने वाले यूरोपीय हथियार आग में घी का काम करते थे। यूरोपीय अफ्रीकी इलाकों में गृह युद्धों को हवा देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग़ुलामी के लिए शिकार कर सकें और इस व्यापार से मोटी कमाई कर सकें। इस धंधे में असाधारण लाभ ने अमेरिका में अफ्रीकी ग़ुलामों की भरमार कर दी। सिर्फ 20 साल में यानी 1680 से 1700 तक एंग्लो अफ्रीकन कंपनी ने करीब 3 लाख लोगों को उनके परिजनों से जुदा किया और अमेरिका पहुंचा दिया। 1700 से 1786 तक 6,10,000 अफ्रीकियों को अकेले जमैका भेजा गया जहां के कृषि उत्पाद इंग्लैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसी दौरान अंग्रेज़ 21,30,000 ग़ुलामों को उत्तरी अमेरिका ले गए। कुल मिलाकर क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमरीकी महाद्वीप पर कब्ज़ा करने के समय से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय लोगों ने 3.5 मिलियन या 35 लाख अफ्रीकियों का अपहरण किया और उन्हें भयभीत अवस्था में अटलांटिक महासागर की दूसरी ओर और अमरीका के तटों तक पहुँचा दिया। ग़ुलामों की तिजारत और इससे हासिल होने वाले भारी धन के कारण जो कोई भी उनका मालिक होता था वो ग़ुलामों के शरीर पर अपनी मोहर लगा देता था ताकि अगर वो भाग जाए या चोरी हो जाए तो मालिक उस पर अपना दावा ठोक सके। ये ग़ुलामों के शरीर को दाग कर किया जाता था। धातु का वो टुकड़ा जिस पर मालिक का नाम या निशान खुदा होता था जब आग में पूरी तरह गर्म हो जाता था तो उसे जंजीरों में बंधे हुए गुलाम की छाती या बांह पर रख दिया जाता था। जब गुलाम बेचा जाता था तो नया मालिक भी अपना अधिकार जमाने के लिए ऐसा ही करता था। इसीलिए गुलाम नए मालिक के पास नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इस तरह उन्हें बार बार ये यातना सहनी पड़ती थी। मालिक गुलामों को 2 पैरों वाले जानवरों के रूप में देखते थे जो केवल उनकी सेवा के लिए बनाए गए थे और उनके कोई मानवाधिकार नहीं थे। आप सोच सकते हैं कि ऐसी सोच ने आज की दुनिया में अपना रंग खो दिया है और कोई भी इंसान दूसरे इंसान के प्रति ऐसी मानसिकता नहीं रखता। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ज़ायनी शासन के रक्षा मंत्री ने कहा था, हम गज़ा को चारों तरफ से घेर रहे हैं, हम बिजली, पानी, भोजन और ईंधन बंद कर देंगे, सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, हम मानव जैसे दिखने वाले जानवरों के साथ युद्ध में हैं। 18वीं शताब्दी में ग़ुलामों की लगातार बढ़ती कीमत के कारण यूरोपीय सरकारों ने ग़ुलामों के व्यापार पर अधिक ध्यान दिया। ग़ुलाम के व्यापारियों को जहाज़ जब यूरोप और अमेरिका की बंदरगाहों में प्रवेश करवाते थे तो कुछ भी करने से पहले उन्हें जहाज़ के गोदाम में मौजूद ग़ुलामों का सीमा शुल्क सरकार को देना पड़ता था। बंदरगाहों में सरकारों को इस धंधे से अत्यधिक सीमा शुल्क प्राप्त होता था और ये आय उनके लिए किसी भी अन्य चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण थी। उस समय ये लाभदायक व्यवसाय ब्रिटिश सरकार के कब्ज़े में था और यही बात ब्रिटिश राजनेताओं और शासकों को चिंतित करती थी। उन्हें चिंता थी कि कहीं वे इस अनोखे व्यवसाय को खो ना दें, इसलिए उन्होंने न सिर्फ अफ्रीका और उत्तर और दक्षिण अमरीका में ग़ुलामों के बाज़ारों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की बल्कि उन्होंने अफ्रीकियों के लिए एक ऐसी स्थिति बनाने की भी कोशिश की जिससे उनके बुज़ुर्ग और प्रभावशाली लोग ग़ुलामों की तिजारत और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल और लिप्त हो जाएं। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के व्यापार विभाग के प्रमुखों में से एक ने सांसदों से कहा, आप सोचते होंगे कि अगर कपास, गन्ना और तंबाकू की खेती अफ्रीका में आम हो जाती तो अफ्रीका के निकट होने के कारण यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीकी कबीलों के सरदार युद्धों से अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी वे युद्ध में लोगों को बंदी बना लेते हैं और इन बंदियों को हमें बेच देते हैं। लेकिन अगर वे किसान बनते और कपास या गन्ने की खेती करते तो वे अपने बंधकों को इन क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर करते और उनके पास बेचने के लिए कोई गुलाम न होता। तब दास व्यापार से हमें होने वाला मुनाफा कहाँ मिलता। इस तरह से व्यापारिक त्रिकोण टूट जाते और उत्तरी और मध्य अमेरिका में हमारे खेत और बागान नष्ट हो जाते और हमारी कपड़ा मिलों को कपास न मिलता और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती। इसलिए किसी को भी अफ्रीका में कृषि और समृद्धि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये कंज्यूमर कल्चर और वर्चस्ववाद यूरोपीय समाज में सदियों से मौजूद था और शायद इसी जीवन शैली के कारण थॉमस हॉब्स ने कहा था, मनुष्य के लिए मनुष्य एक भेड़िया है। हॉब्स 17वीं शताब्दी के एक अंग्रेज राजनीतिक दार्शनिक थे। उनका मानना था मनुष्य में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक अतृप्त और निरंतर इच्छा होती है और मरते दम तक इस इच्छा की संतुष्टि नहीं होती। मौत के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। थॉमस हॉब्स का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी नहीं है, लेकिन सुरक्षा प्रदान करने और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं से बचने के लिए उसने सामाजिक जीवन की ओर रुख किया है। इसके बावजूद इसी सामाजिक जीवन में लोगों में अपनी इच्छाओं की संतुष्टि को लेकर झगड़े होते हैं। इस संघर्ष में वही व्यक्ति जीतता है जिसके पास अधिक शक्ति होती है। इस प्रकार के विचार में इच्छाओं की संतुष्टि के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे लोगों को उतना ही सम्मान दो जितना खुद को दे सकते हो और देना चाहते हो, और दूसरों को प्यार करो का नैतिक सिद्धांत मानव जाति की मूल प्रकृति के विपरीत नहीं है। हॉब्स के अनुसार अगर मनुष्य को समाज में रहना है तो उसे अपना मूल स्वभाव त्याग कर उसका विरोध करना होगा। शायद अगर हम उस समाज में रहते जहां थॉमस हॉब्स रहते थे तो हमें मानव स्वभाव और सच्चाई का बेहतर अंदाजा नहीं होता। हॉब्स द्वारा मनुष्यों को एक दूसरे के लिए भेड़िया करार देने और मनुष्य की एकमात्र इच्छा और लक्ष्य इच्छाओं की संतुष्टि की घोषणा से 10 शताब्दियों पहले 7वीं शताब्दी में शियाओं के चौथे इमाम हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के घर में उनका ग़ुलाम इमाम के हाथ धोने के लिए पानी का कटोरा लाया। पानी का कटोरा उसके हाथ से छटक कर इमाम के सिर पर लगा। इससे उनके सिर में घाव हो गया। ग़ुलाम को इमाम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि अन्य मालिकों की तरह उसे कठोर सज़ा दी जाएगी। इसलिए उसने तुरंत कुरान की आयत पढ़ी जो उसने खुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से सुनी थी। उसने ये आयत पढ़ी कि भले लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं। इमाम सज्जाद ने कहा, मैंने अपने गुस्से को दबा दिया। दास ने चैन की सांस ली और आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, भले लोग दूसरों को माफ़ कर देते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा तुझे माफ़ करे। ग़ुलाम ने जब ये देखा तो आयत का आखिरी हिस्सा भी पढ़ दिया, अल्लाह नेक लोगों से प्यार करता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ग़ुलाम को देख कर मुस्कुराए और उन्होंने उससे कहा, जाओ, मैं तुम्हें ईश्वर की राह में आज़ाद करता हूँ।